em Miami. Mas eu tô achando chato. Eu fico até bom, porque é velho. Ele explodiu. O que tá andando aqui?
सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभुक्तं च। श्लोक में भगवान अपने कुछ ऐसे गुणों के बारे में कह रहे हैं और इस तरीके से कह रहे हैं कि यदि इसे हम ठीक से गहराई से न समझें तो हम विचलित हो जाएं या भ्रमित हो जाएं, क्योंकि इस श्लोक में भगवान अपने गुणों में विरोधाभास दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन जिसे अंग्रेजी में कहेंगे। जैसे यहां पर भगवान ने श्लोक की शुरुआत की है सर्व इंद्रिय गुण आभासम, इसका अर्थ है सर्व इंद्रिय, सभी इंद्रियों के भगवान स्रोत हैं। गुण आभासम, हमारी इंद्रियां, सभी जीवों की इंद्रियां भगवान स्रोत हैं, हम सब की इंद्रियों के। जैसे कि हमने कई बार इस श्लोक पर भी चर्चा की है, ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिक हमारे इंद्रियों को कहा गया है और ऋषिकेश ये भगवान का एक नाम है जो कि हमारी सब इंद्रियों के स्रोत और ईश्वर हैं। परंतु यहां पर इतना तो ठीक से समझ में आता है कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम, हम सब की इंद्रियों के स्रोत भगवान हैं, परंतु भगवान इसके साथ साथ कहते हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम, मेरी कोई इंद्रियां नहीं है, मैं सारी इंद्रियों से वर्जित। अब यह विरोधाभास लगता है कि नहीं, कि भगवान हम सब की इंद्रियों के स्रोत हैं और उनकी कोई इंद्रियां नहीं। तो आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा कि इस अध्याय में और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यदि हम देखें तो भगवान में यह विरोधाभास जो देखा गया है क्या है या नहीं है, है तो कैसे समझें, और यदि नहीं है तो भगवान क्यों बोल रहे हैं इस विरोधाभास के विषय में। सबसे पहले इस 13वें अध्याय के ये जो कुछ श्लोक हैं, हमने केवल एक ही श्लोक लिया परंतु यहां पर हम कुछ गुणास्पद विरोधाभास भगवान के पहले लेंगे। गुणास्पद का अर्थ है भगवान के गुणों से संबंधित। जैसे कि सबसे पहले भगवान ने कहा सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, कि मैं सबके इंद्रियों का स्रोत हूं परंतु मेरी कोई इंद्रियां नहीं, मैं विवर्जित। कैसे समझें इसे? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब कभी भी उपनिषदों में, हमारे वैदिक शास्त्रों में भगवान को बिना इंद्रिय के, या भगवान को कहा गया निर्गुण, जो ब्रह्मवादी और मायावादी होते हैं उन्हें ये सारे शब्द बहुत प्रिय लगते हैं, निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष और बिना किसी रूप के निरूपमस्य कहते हैं, और ये सब उपनिषदों में कहा गया है, भगवान के ही वाक्य हैं, इसे हम नकार नहीं सकते। इसे समझ सकते हैं ठीक तरीके से कि जब भगवान कहते हैं कि उनकी कोई इंद्रियां नहीं, इसका अर्थ है कि उनकी कोई भौतिक इंद्रियां नहीं। जैसे कि एक उदाहरण यदि हम लें कि अमेरिका में यदि आप बिल गेट्स को आप जानते होंगे, सुना होगा इस व्यक्ति के विषय में, बहुत बड़ा रईस धनवान व्यक्ति है ये। यदि कोई इस व्यक्ति से जाकर पूछे कि क्या आपके बैंक में 1 रुपया है, तो क्या उत्तर देगा वो? हाँ या ना? उसके बैंक में 1 रुपया है या नहीं है? आप लोग थोड़ा असमंजस में पड़ गए। मान लीजिए उसने कहा नहीं, क्या वो सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है? सत्य बोल रहा है। तो यदि उसने सत्य कहा कि उसके बैंक में 1 रुपया भी नहीं, तो यदि कोई उसे नहीं जानता तो किस निष्कर्ष पर आएगा? ये तो भिखारी है, 1 रुपया भी नहीं इसके पास। अरे मेरे बैंक में कम से कम 100 रुपए तो हैं। तो अब ये बात सत्य है, क्या वो भिखारी है? नहीं। तो केवल यदि इसी वाक्य पर हम निष्कर्ष निकाल लें कि बिल गेट्स के बैंक बैलेंस में 1 रुपया भी नहीं है इसलिए वो भिखारी है, ये ठीक नहीं। वैसे ही भगवान जब कहते हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान इंद्रियों से वंचित या वर्जित हैं। उसके बैंक में यदि जाकर देखो तो उसके पास ऐसा पैसा है जो हम कल्पना में नहीं कर सकते इस भारत में। वैसे ही भगवान के पास ऐसी इंद्रियां हैं जो हम हमारी इंद्रियों से कल्पना में नहीं कर सकते, भगवान की इंद्रियां कैसे होंगी। इसलिए कई बार जब शास्त्रों में ऐसे वाक्य आते हैं तो जब इनका गलत अर्थ दिया जाता है और कहने का तात्पर्य कई बार मायावादियों का या ब्रह्मवादियों का होता है कि भगवान का कोई रूप नहीं, क्योंकि यदि भगवान का रूप कहेंगे तो भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, जो कि भगवान ने आकर अपने आप को सिद्ध किया कि वो भगवान हैं, और यदि उसे स्वीकार करेंगे तो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा तो हमें अपने दासत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। वो पूरा लिंक है। इसलिए वही बात को अलग तरीके से कहने से ये नहीं कि वो बात को झुठला सकता है कोई। श्रील प्रभुपाद एक कथा कहा करते थे। एक राजा था और इस राजा को किसी युद्ध में वो विजय प्राप्त हुई और उस राज्य से उसे एक सफेद हाथी मिला। अब सफेद हाथी बहुत विरला होता है, साधारणतः पाया नहीं जाता सफेद हाथी। तो इसे सफेद हाथी मिला और इतना प्रसन्न हुआ और इसे हर समय वो सफेद हाथी की देखरेख के विषय में वो सोचता रहता और हर एक हफ्ते 15 दिन में उसके ऊपर सवारी होती उसकी, सफेद हाथी के ऊपर। और इतना प्रेम वो उस सफेद हाथी से करने लगा कि उसने अपने मंत्रियों को, सैनिकों को, सेनापतियों को कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सफेद हाथी ये जीवित रहना चाहिए और जितनी धनराशि लगे, जितने व्यक्ति लगे, मैन पावर, मनी पावर, विटामिन एम, जितना भी लगे इसके ऊपर लगाओ और इस हाथी की सांसें चलती रहनी चाहिए, ये जीते रहना चाहिए। और उसने नियम बता दिया कि कोई भी व्यक्ति यदि मुझे ये समाचार लाकर देगा किस दिन कि सफेद हाथी मर गया, वो व्यक्ति वहीं पर खत्म, उसका सर धड़ से अलग, मैं स्वयं करूंगा। तो अब जो महूत और देखरेख करने वाले वो इतने भयभीत कि भाई इस हाथी की देखरेख हमसे ज्यादा हमें करनी है। तो हुआ क्या, कुछ वर्ष बीते और एक दिन हाथी मर गया, बीमार था हाथी मर गया। अब ये समाचार जाकर राजा को कौन दे कि हाथी मर गया, Who will bell the cat? तो अब उसमें से एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, उसने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं राजा के पास ये समाचार लेकर। एक दिन हो चुका था हाथी को मरे, अब तक राजा को कोई बताया नहीं है। तो ये विद्वान व्यक्ति जाता है और राजा से कहता है, राजन एक समाचार आपको देना चाहते हैं कि आज सुबह हम आपके जो सफेद हाथी का दर्शन करने गए तो हमने देखा कि आज वो सुबह सुबह उठा ही नहीं था, सो रहा था। साधारणतः तो जल्दी 5, 5:30, 6 बजे उठ जाया करता, परंतु आज जब हम जाकर देखे तो दिन के 9 बज रहे थे और हाथी अब तक उठा नहीं था। अच्छा 9 बजे तक नहीं उठा, क्या बीमार है, देखा उसको जाकर? हां हम जाकर देखे, वैद्य को भी लेकर गए, जो प्राणी के विशेषज्ञ होते उनको लेकर गए, और उसने देखा तो वो हाथी हिलडुल भी नहीं रहा था, बिना हिले डुले ऐसे ही। तो राजा ने कहा सो रहा होगा तो हिलेगा कैसे? तो ये व्यक्ति कहता है नहीं नहीं इतनी सी बात नहीं थी, उसका शरीर ठंडा हो गया था, शरीर ठंडा हो गया और वो सांस ले रहा था कि नहीं वो भी कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पता नहीं लग रहा था, उल्टा ऐसा लग रहा था कि सांस भी नहीं चल रही थी उसकी। हमने अंकुश से बहुत प्रेरित किया उसे उठाने के लिए परंतु फिर भी नहीं उठा। तो राजा ने कहा कब तक प्रेरित किया उसे उठाने के लिए? एक पूरा घंटा, पूरा एक घंटा हम उस अंकुश से उसे टोच रहे थे परंतु फिर भी वो हाथी नहीं उठा, सांस रुकी हुई, शरीर ठंडा हो गया और बस एक घंटे तक वहां पर गिरा पड़ा था वो। अरे जाकर देखो मर तो नहीं गया? तो विद्वान कहते हैं मैंने नहीं कहा वो, तो राजा समझ गया कि ये सारे लक्षण एक मृत हाथी के थे, परंतु ये कह देना कि हाथी मरा नहीं, ये कह देना कि हाथी मर गया और ये कहना कि हाथी में ये सब लक्षण पाए गए हैं, एक बराबर है। तो यहां पर जब भगवान कह रहे हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान की इंद्रियां ही नहीं है, भगवान की दिव्य इंद्रियां हैं, इसलिए यह विरोधाभास दिख रहा है, परंतु विरोधाभास है भी और नहीं भी, कि भगवान की इंद्रियां नहीं हैं, कौन सी? हमारी तरह की, जैसे कि बिल गेट्स के पास 1 रुपया नहीं है और है भी बहुत ज्यादा, 1 रुपए से है उसके पास। तो इन कुछ श्लोकों में ये सारे कुछ विरोधाभास बताए गए हैं। भगवान भौतिक गुणों के नियंता हैं, भौतिक गुणों से परे। अब देखिए, कोई व्यक्ति जब किसी का नियंता होता है तो उससे ज्यादा परे नहीं रह सकता वो। यदि किसी कंपनी का मालिक है, कंपनी का नियंता है कोई, तो वो उस कंपनी में उसे जाना होगा, रोज नहीं तो कम से कम महीने में एक बार, नहीं तो साल में एक बार। और भगवान, यदि कोई कहे ठीक है भगवान भी तो इस कंपनी में आते हैं, युगा युगायतम, भगवान कहते हैं कि हर युग में आते हैं, परंतु भगवान आते हुए भी इस पूरे भौतिक संसार से, पूरे भौतिक संसार में जितने भी गुण हैं, प्रकृति के नियम हैं, उन सब से भगवान अनभिज्ञ रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का विरोधाभास भगवान बता रहे हैं अपने गुणों की दृष्टिकोण से। सभी जीवों में अवस्थित, सभी जीवों से परे, भगवान सभी के हृदय में स्थित हैं, परमात्मा के रूप में अंतर्यामी चैत्य गुरु। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि यदि भगवान किसी प्राणी के हृदय में हैं, यदि किसी सुअर के हृदय में हैं, और सुअर यदि गंदगी में हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान भी उस गंदगी से प्रभावित हो रहे हैं। भगवान फिर भी हृदय में स्थित होने के बावजूद भगवान हर जीव से परे हैं, सभी के पालन करता है, और भगवान साथ साथ सभी के संहार करता। वही पालन कर रहे हैं हम सबका, और प्रलय उन्हीं के कारण होगा, और उन्हीं के द्वारा प्रेरित प्रलय होता है। और प्रलय तो खैर इस काल के अंत में होगा, परंतु हर क्षण ये जो शरीर काल सर्प के गिरफ्त में जा रहा है, वो भी भगवान की शक्ति है। कालोस्मी लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, भगवान कहे हैं। तो काल के रूप में वही भगवान की शक्ति हम सब का संहार कर रही है, और वही भगवान इस प्रकृति के द्वारा हमें जिला रही है। तो ये विरोधाभास लग रहा है भगवान के अंदर, अरे या तो मारो या खिलाओ, ये खिला के मार रहे हो। तो हालांकि ये लगता है विरोधाभास, परंतु भगवान का ये एक गुण है, इसकी हम चर्चा करेंगे कि ये विरोधाभास होना, ये इनके अंदर एक विशेषता है उनकी। अब सबसे पहले ये प्रश्न यदि हम पूछें कि विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन किसी व्यक्ति में यदि देखा जाए, क्या वह किसी के सद्गुणों का लक्षण है या दुर्गुणों का लक्षण है? जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत नम्रता से बात करता है, और उसके शब्द एकदम मीठे गुड़ के समान, आजकल गुड़ मीठा है होता है कि ज्यादा और उससे कुछ मीठा, शुगर कैंडी या गन्ना, गन्ने का रस, उसके शब्द वैसे एकदम मीठे, परंतु उसके साथ साथ वो व्यक्ति एकदम क्रोधित अंदर, ऊपर से एकदम मीठा मीठा बोलता है, परंतु अंदर द्वेष क्रोध एकदम कड़वा भरा हुआ, तो क्या ये इस व्यक्ति का सद्गुण है या दुर्गुण? हम चर्चा करेंगे कि सद्गुण और दुर्गुण इसे कैसे पहचाना जाए। एक चित्र आपको दिखाना चाहेंगे, ध्यान से देखिए इस चित्र को। इसमें क्या विरोधाभास दिख रहा है आपको? अब कई लोगों की भूख बढ़ गई होगी इसको देखकर। एक छोटी सी चींटी और इतने सारे, एक दो पता नहीं कितने बिस्किट, यदि इनको तीन कहें या ठीक है, अतुल मालपाणी प्रभु कह रहे हैं तीन, वो कह रहे हैं क्रीम के साथ, तो इसमें विरोधाभास दिख रहा है। विरोधाभास ये है कि इतनी भारी वस्तु और इतनी सी चींटी कैसे उठा सकती है। उसके शरीर, उसकी काया को यदि देखो और इसके ऊपर वो जो उठा रही है उसे देखो, तो ये विरोधाभास है। अब इसमें आप सद्गुण देख रहे हैं या दुर्गुण देख रहे हैं, क्या दिख रहा है इसमें? चींटी का सद्गुण है या दुर्गुण है? यदि हमारे किचन का बिस्किट है तो दुर्गुण, नहीं तो कोई चींटी का गुणगान करेगा, इतनी सी चींटी इतने सारे बिस्किट उठाए कि देखो कितनी शक्ति है इस चींटी के अंदर। तो यही चित्र जिसके अंदर विरोधाभास दिख रहा है, हमें या तो सद्गुण दिखेगा या दुर्गुण दिखेगा, निर्भर करता है देश काल पात्र के अनुसार। तो वैसे ही जब किसी व्यक्ति के अंदर विरोधाभास हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसे भी हमें देश काल पात्र के अनुसार परखना होगा, तब जाकर समझ में आएगा कि वो विरोधाभास उसका सद्गुण है या उसका दुर्गुण। यदि हम पहले दुर्गुणों के लक्षण लें तो कुछ कुछ एक विरोधाभास लेते हैं जिनमें समझ में आ जाएगा कि ठीक है ये दुर्गुण के लक्षण है। एक धनवान व्यक्ति भीख मांग रहा है। साधारणतः धनवान व्यक्ति को क्या आवश्यकता है भीख मांगने की, परंतु धनवान व्यक्ति जब भीख मांगते हुए दिखा तो लोग क्या उसका गुणगान करेंगे कि देखो ये व्यक्ति कितना अपने जीवन में वैरायटी रखा है। पाश्चात्य देश में कई लोग करते हैं, बड़े बड़े धनवान मल्टी मिलेनियर्स जिन्हें कहते हैं, वहां पर करोड़पति से भी ऊंचे हैं वो लोग तंग आ गए हैं उनका वो उस प्रकार का ऐश्वर्यशाली जीवन जीते जीते, तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जस्ट फॉर अ चेंज, ये रास्ते में भिखारी के कपड़े पहनकर भीख मांगने जाते हैं और फिर उनमें स्पर्धा होती है कि कौन अधिक भीख इकट्ठा कर सकता है, और उसमें वो लोग शर्त रखते हैं कि यदि एक करोड़पति ने ज्यादा भीख इकट्ठा की तो वो करोड़ों जीतता है दूसरों से। तो उसे फिर उसके कटोरे में करोड़ रुपए डालने या डॉलर डालने पड़ते हैं। परंतु साधारणतः जब कोई बहुत धनवान व्यक्ति है और भीख मांग रहा है तो उसका गुणगान, ये विरोधाभास जो है ये विरोधाभास का गुणगान नहीं होता। कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है परंतु डरपोक, एकदम चूहे की तरह, पता नहीं आजकल चूहे भी डरते नहीं हो, परंतु बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, मैंने हम लोग खंडाला गए थे तो वहां खंडाला रेलवे स्टेशन पर मैंने देखा दो तीन कुत्ते बिल्ली के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, एक नहीं दो तीन कुत्ते बिल्ली के ऊपर, और ये मेरे सामने हुआ ये घटना, और बिल्ली ने इतने जोर से उन कुत्तों के ऊपर चिंघाड़ा, जो भी वो बिल्ली कैसे करती है, वो दुम दबाकर तीनों कुत्ते भाग गए। तो मैं ध्यान से देख रहा था कि कुत्ते कुत्ता कौन है, बिल्ली कौन है? तो कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, जिसे कई बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली होता है, जाएगा व्यायामशाला में और बड़े बड़े वहां पर वर्जिश करता है और वजन उठाता है और उसे कोई देखते ही डर जाए, परंतु वो जब घर में आता है और जब उसे थमाया जाता है, जाओ सब्जी नहीं है घर पर लेकर आओ, तो जितना सारा वजन उठाया है अब एकदम हल्का हो जाता है। तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति और उसके साथ भय या डरपोक होना, ये एक विरोधाभास। कोई बहुत पढ़ा लिखा है और बेरोजगार, आजकल इसके ऊपर लोग बहुत अचरज करते हैं, अरे इतना तुमने पढ़ाई किया, और कई बार देखते हैं कि किसी ने कुछ पढ़ाई नहीं किया और इतना पैसा कमा रहा है, वो कहता है अरे यहां लिखा हुआ होना चाहिए, इधर लिखने से क्या होता है, यहां लिखा हुआ होना चाहिए। एक बार एक बालक वो स्कूल से घर पर आया रोते हुए, और रोते हुए वो अपने माता पिता से कहता है कि कल से मैं स्कूल वूल नहीं आऊंगा। क्यों, क्या हुआ, पिताजी पूछते हैं। वो कहता है कि अरे वो टीचर को कोई अकल ही नहीं है, वो टीचर मुझे डांट रही है ऐसे कार्य के लिए जो मैंने किया ही नहीं। तो पिताजी ने कहा बड़ी बेवकूफ टीचर है, और ऐसी उद्दंड टीचर कि जो तुमने किया नहीं उसके लिए डांट रही है। हाँ, आए दिन जो मैं नहीं करता उसके लिए वो डांटती रहती है, और जो लोग करते हैं उनको कभी नहीं डांटती हूं। अरे तो कौन सी ऐसी चीज है जो तुमने नहीं की और वो डांटती है? होमवर्क। तो यहां पर जब तक ठीक से बताया नहीं जाए तो ये विरोधाभास समझ में नहीं आएगा कि वो टीचर ऐसी कौन सी चीज जो इसने नहीं की जिसके लिए वो डांटती है। सुंदर एवं सुशिक्षित, परंतु अब तक लुखा, बिना घी की चपाती होती ना, या कुंवारी या कुंवारा, तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इतने सुशिक्षित हो, दिखने में भी इंसान दिखते हो, अब तक बजा नहीं बैंड। तो ये एक विरोधाभास। और कई बार मेरा एक बंबई का एक मित्र है, एक बार गीता कोर्स वगैरह उसने अटेंड किया, बहुत दिखने में सुंदर और बहुत बड़े परिवार से और ऐश्वर्यशाली और सुशिक्षित, सभी गुण, और उम्र उसकी बीती जा रही, अब तक विवाह नहीं हुआ, क्योंकि वो इतने सारे गुण उसके अंदर हैं, इसलिए वो प्रतीक्षा में है कि कोई ऐसी हूर की परी आएगी जो मैच करेगी उसके गुण को। तो मैंने कहा भाई वो कैसे तुम्हें पता लगेगा? मैं ढूंढ रहा हूं, 40 साल हो गए, 40 साल तो ढूंढते रह जाओगे तुम तो फिर। तो भगवान को कोई एप्लीकेशन दो कि उस हिसाब का कोई शुरू करे बनाना, तो कई बार कोई बहुत अति सुंदर या अति सुशिक्षित रहता है, उसके अंदर फिर इस प्रकार का विरोधाभास पाया जाता है। और कई बार जो सर्वसाधारण काम करने वाले, उनका जीवन चल रहा है सुखपूर्वक, ज्यादा उनको टेंशन नहीं रहता। तो ये कुछ एक विरोधाभास हमने लिए हैं जिसके अंदर ये लक्षण देख सकते हैं। अब यदि सद्गुणों के लक्षण हम लें जिसके अंदर विरोधाभास देखेंगे, परंतु वो विरोधाभास प्रशंसनीय है, उनके सद्गुणों का बखान करते हैं। जैसे कि कोई गुणवान होने पर भी नम्र, बहुत गुण हैं, बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत ऐश्वर्यशाली है, सारे गुण से संपन्न, सर्वगुण संपन्न, परंतु उसके साथ नम्रता। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि संतरा, संतरे के अंदर जो रस होता है या कोई भी रसीला फल, उसके ऊपर जो छिलका होता है, वो छिलके की तुलना नम्रता से की गई है कि उस फल का जो रस है वो ताजा रहेगा जब तक कि वो छिलका उसके ऊपर है। जैसे वो छिलका निकाल दो, तुरंत वो संतरा सूखने लगेगा या जो भी आम या जो भी रसीला फल है वो सड़ने लगेगा। तो वो जो छिलका है वो सुरक्षित रखता है उस फल के रस को। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति बहुत गुणवान है, सर्वगुण संपन्न है, तो जो नम्रता का छिलका जब तक उसके ऊपर नहीं है, तब तक वो जो रस है बहुत समय तक नहीं टिक पाएगा, वो जो गुण है बहुत समय तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए उदाहरण दिया गया है कि एक गुणवान व्यक्ति वो उस पेड़ के फलों के समान है जिस पेड़ में बहुत बड़े बड़े फल लगे हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी आम के वृक्ष पर बहुत बड़े बड़े आम लगते हैं तो वो झुक जाता है, वो वृक्ष झुक जाता है। और कई बार ऐसे होते हैं पेड़ कि जिन पर कोई फल नहीं लगता, वो एकदम सीख की तरह खड़े रहते हैं। तो अहंकारी व्यक्ति जो है, जिसके अंदर वास्तविक रूप में कोई गुण नहीं है परंतु केवल अहंकार भरा हुआ है, वो उस पेड़ के समान है जो एकदम सीधा खड़ा है। न तो वो छांव दे पाता है ठीक से, न कोई उस पेड़ को ठीक से इस्तेमाल कर पाता है। परंतु जो गुणों से संपन्न है और उसके साथ नम्रता है, वो झुकता है जैसे फल से लदा हुआ पेड़ झुकता है। तो ये जो विरोधाभास किसी में पाया जाता है, ये उसका सद्गुण है। निर्धन होने पर भी दानवीर, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीधर कोलवेज का उदाहरण है कि इतने निर्धन कि उनके पास स्वयं के पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, और जितना वो कमाते, दिन का कुछ 50 पैसा या 1 रुपया जितना वो कमाते, उसका आधा वो गंगा की पूजा में और दीन दुखियारों के लिए दे देते, और उसमें से जो बचता वो अपने स्वयं के यापन के लिए रखते। तो ऐसा व्यक्ति जो कि स्वयं निर्धन है और दान शूर है, वो व्यक्ति का गुणगान ज्यादा होता है। जिसके पास बहुत कुछ है और दान देता है वो तो ठीक है, तो लोग कहते हैं तो देना ही चाहिए। तो ये एक विरोधाभास सद्गुण का लक्षण है। भोगों के मध्य अनासक्त रहना, जब भोग नहीं है और कोई व्यक्ति अनासक्त है वो भी ठीक है एक गुण, परंतु इसमें विरोधाभास नहीं है इसलिए उसके सद्गुण इतने उभर कर नहीं दिखते। इसलिए महाभारत में उदाहरण है भीष्म पितामह, कि जब भीष्म पितामह ने वो प्रतिज्ञा ली आजीवन ब्रह्मचर्य, तो भीष्म पितामह की उस प्रतिज्ञा के ऊपर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। अब उन युगों में आजीवन ब्रह्मचर्य तो आए दिन लोग इस व्रत को लिया करते थे, बहुत साधारण सी बात थी। ब्रह्मचर्य व्रत को लेना। आजकल कोई ब्रह्मचर्य व्रत को लेता है तो वो बहुत असाधारण बात हो जाती है। तो देवताओं ने पुष्पों की वर्षा क्यों की? भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा ली, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, किसी जंगल के गुरुकुल में नहीं, हस्तिनापुर के महल में सारे भोगों के मध्य में रहते हुए, और इसलिए उनकी प्रतिज्ञा भीषण थी, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जंगल में और किसी गुफा में रहते हुए करना तो बहुत आसान है, जहां पर वैसे भी कोई भोग नहीं है तो और करने के लिए क्या होगा, ठीक है। परंतु भोगों के मध्य में भीष्म पितामह ने जो ये प्रण लिया, इसलिए ये एक विरोधाभास उनका सद्गुण बन गया। सर्व संपन्न होने पर भी शरणागत होना, और इसके ज्वलंत उदाहरण है बलि महाराज की। कोई आवश्यकता नहीं थी बलि महाराज, शुक्राचार्य बोल रहे थे बलि महाराज को कि मैं शास्त्र को कोट करके कहता हूं कि तुम फिर से मुकर सकते हो, तुमने जो वादा दे दिया है, तुमने जो प्रण ले लिया है कि तीन पग भूमि इस ब्राह्मण को दोगे, द्विज को दोगे, और वो देने की भी आवश्यकता नहीं थी, बलि महाराज के पास सब कुछ था, परंतु सर्व गुण संपन्न या सर्व संपन्न होने के बावजूद उन्होंने कहा कि यदि ये विष्णु हैं तब तो अवश्य ही मुझे शरणागत होना चाहिए इनके, क्योंकि यही एक गुण है जो मेरे पास नहीं है अब तक, शरणागति, बाकी सब कुछ है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सद्गुणों के लक्षण दिखते हैं इन विरोधाभास गुणों में। अब भगवान श्री कृष्ण या भगवान की एक परिभाषा, जैसे भगवान की कई परिभाषाएं दी गई हैं कि भगवान छह ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, भगवान सबके नियंता हैं, सृष्टिकर्ता हैं, परंतु ये एक परिभाषा शास्त्रों में दी गई है जो सभी विरोधाभास के समाधान हैं। All contradictions are resolved in the absolute truth. जितने भी विरोधाभास हैं वो जब उनमें उनका समाधान मिलता है उन भगवान में, तो वो हैं भगवान। तो यदि हम अब भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं को देखें तो उसमें पता लगेगा कि भगवान के कुछ लीलास्पद विरोधाभास, और कैसे समझें कि भगवान ने अपनी लीलाओं में, गुणों में तो हमने कुछ गुण ले लिए, परंतु भगवान ने अपनी लीलाओं में ऐसी ऐसी लीलाएं की कि यदि उसी क्षण या उसी समय भगवान की किसी और लीला को रखें तो बिल्कुल विपरीत लीला भगवान की हुई। गोपियों के वस्त्रों का हरण किया भगवान ने, परंतु द्रौपदी को असीमित वस्त्र प्रदान किया। ये दोनों में विरोधाभास दिख रहा है केवल बाहरी दृष्टिकोण से। जब तक हम उस लीला के मर्म को नहीं जानेंगे कि इन दोनों लीलाओं में वस्त्रों का हरण करना और असीमित वस्त्र प्रदान करना, इन दोनों में भगवान का प्रेम दिखा। गोपियां चाहती थी कि भगवान उस लीला को करें, और द्रौपदी चाहती थी कि भगवान द्रौपदी को उस प्रकार के रक्षा करें। तो हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से भगवान ने जो किया वो लोग भगवान के ऊपर कई बार आरोप लगाते हैं कि ये कैसे भगवान हैं आपके जिन्होंने इस प्रकार की लीलाएं की, परंतु भगवान यहां पर अपने भक्तों की प्रसन्नता देख रहे हैं। अपने स्वयं के अंदर विरोधाभास हो रहा है या किसी को दिख रहा है कोई परवाह नहीं भगवान को। यदि वस्त्र चुराने से मेरे भक्त प्रसन्न होते हैं तो वो मैं करूंगा, यदि असीमित वस्त्र प्रदान करने से मेरे भक्त प्रसन्न होते हैं तो वो मैं करूंगा। तो यहां पर भगवान की ये एक लीला में उनका विरोधाभास देखा गया है, परंतु भगवान अपने भक्तों के प्रेमी हैं इसमें। माखन चोरी भगवान ने की, परंतु गोवर्धन पूजा में भगवान ने इन्हीं सब ब्रजवासियों को असीमित प्रसाद प्रदान किया। अब यदि कोई भगवान पर यह आरोप लगाए कि आपके भगवान इतने ज्यादा भूखे हैं कि चोरी करनी पड़ती है उन्हें माखन की, या कलयुग के भाषा में जिसे कहेंगे भुक्कड़, कई बार लोग इस हद तक जाते हैं कि अरे भाई कुछ भगवान का स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या ये चोरियां, वो भी माखन की। नहीं, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है किसी की माखन चोरी करने की। अरे जो सबके स्रोत हैं वो क्या माखन पैदा नहीं कर सकते अपने लिए? और जो आत्माराम हैं, जो स्वयं संपन्न हैं, उन्हें कोई माखन की आवश्यकता है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए? वो गोपियां रोज प्रार्थना करती थी, जब वो दूध निकालती, दूध निकालने के पश्चात जब गोपियां उसका दही लगाती, हर एक उस पहलू में वो सारी गोपियां प्रार्थना करती कि कब ये आएगा कृष्ण और इस माखन को, दही को चुराएगा। तो सोचिए, इतनी सारी गोपियां, तो भगवान तो केवल दिन में किसी एक गोपी के घर जाते चुराने के लिए। तो भक्त तो आरोप भगवान के ऊपर ये लगाते हैं कि इतनी गोपियां प्रार्थना कर रही हैं और आप एक ही गोपी के घर में जाकर चुराते हो माखन, ना इंसाफी। अब देखिए, भगवान चुराएं तो भी उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और भगवान न चुराएं तो भी उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। परंतु दोनों आरोप, एक है ईर्ष्या के कारण, एक है प्रेम के कारण, कि आप एक ही घर में जाकर क्यों चुरा रहे हो? इतने सारी गोपियां, इतना माखन निकालकर वो आप ही के लिए तो रखी है चुराने के लिए। और ऐसा नहीं, सारी गोपियां चाहती थी कि भगवान आकर चुराएं, मांग कर न लें, उसमें इतना आनंद उन्हें नहीं मिलता था कि भगवान आकर मांग कर लें। तो मान लो कि यदि उनकी केवल इतनी इच्छा होती कि भगवान हमारा माखन खाएं, तो भगवान ठीक है सबके घरों में जाकर थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लिया करते थे। नहीं, भगवान ने देखा कि उनकी इच्छा है कि मैं जाकर चुराऊं, इसलिए मैं वो चोरी की लीला करूंगा, चाहे सारी दुनिया मुझे चोर बोले, मुझ पर लांछन लगाए, आरोपित करे मुझे, परंतु यदि इन गोपियों को प्रसन्नता मिलती है मेरे इस कार्य से। परंतु फिर भगवान ने दिखा दिया गोवर्धन पूजा में कि इन सब ब्रजवासियों को इतना सारा भोग और प्रसाद कि ये सब आश्चर्यचकित हो गई कि ये छोटा सा कृष्ण ये इतना भोग और प्रसाद कहां से उत्पन्न कर दे दिया। सबसे पहले भगवान ने ग्रहण किया और उसके पश्चात उतना ही और उससे ज्यादा सबको भगवान ने प्रदान किया। तो यहां पर यह विरोधाभास देखा गया है कि चुरा लेना और नहीं तो देना, तो इतना देना, इन दोनों में भगवान का प्रेम दिख रहा है। विशाल गोवर्धन उठाया, परंतु कुछ चावल के दाने भगवान नहीं उठा सके अपनी हथेली में। यह हमारी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे आप, वही हथेली। अब यहां पर तो यदि गोवर्धन लीला को ध्यान से आप पढ़ोगे तो भगवान ने गोवर्धन को हथेली में नहीं धारण किया। यदि हम एक शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो हथेली में कोई चीज को लेना और इस उंगली पर लेना कौन सा मुश्किल है? नहीं समझ में आया, ये मुश्किल है कि ये मुश्किल है? ये मुश्किल है ना, इसके ऊपर कुछ धारण करना मुश्किल है, इसके हथेली, खुली हथेली पर धारण करना आसान है। अब सोचिए कि यदि पदार्थों को उल्टा किया जाए, कि भगवान ने गोवर्धन हथेली पर धारण किया और चावल के दाने इस पर, तो गोवर्धन में और चावल के दानों में कौन सा हल्का है? चावल के दाने हल्के, परंतु भगवान ने चावल के दाने हथेली पर नहीं ले पाए और गोवर्धन को इतनी सी उंगली पर उठा लिया। लगाओ बुद्धि, अब बुलाओ वैज्ञानिकों को, क्या पता लगेगा कैसे ये विरोधाभास का सॉल्यूशन क्या है? प्रेम। क्योंकि वो फल वाली, भगवान तो पूरी 100 किलो की बोरी उठाकर दे सकते थे उसे, बासमती चावल की, देहरादून पासी में वृंदावन के भगवान दे सकते थे, परंतु भगवान ने देखा कि ये फल वाली मेरे रूप से ज्यादा आकर्षित है, उसे वो चावल में कुछ नहीं पड़ा, इसलिए भगवान ने अपने हथेली में चावल भी लिया। और ये भी कह सकते हैं कि भगवान जानबूझकर उस चावल को गिरा दिए ताकि वो फल वाली भगवान के इस लीला से इतना ज्यादा मोहित हो जाए कि वो फल वाली अपना सारा फल दे दे भगवान को। और वही भगवान ने जब गोवर्धन धारण किया तो भगवान ने अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया और अपने शक्ति के साथ साथ सारे ब्रजवासियों के साथ 7 दिन 7 रात लीला की गोवर्धन के नीचे। इसलिए कवि कर्णपुर वो कहते हैं कि भगवान की जो हथेली है, केवल हथेली के विषय में बता रहे हैं कि भगवान की जो हथेली है उसमें क्या गुण है। वो कहते हैं कि भगवान जब अपनी हथेली खुली रखते हैं तो भगवान की खुली हथेली कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा मुलायम होती है। कमल की नई पंखुड़ी को यदि आप स्पर्श करो, या कवि कर्णपुर एक और उदाहरण देते हैं कि भगवान की खुली हथेली ताजा निकाला हुआ माखन जितना मुलायम होता है उससे भी ज्यादा मुलायम भगवान की हथेली। और भगवान की हथेली इतनी मुलायम, वो कहते हैं कि कई बार जब भगवान अपनी खुली हथेली रखते और यदि कोई पत्ता भगवान की हथेली पर गिर जाता तो निशान पड़ जाता, यदि कोई गुलाब की पंखुड़ी भगवान की हथेली पर गिरती तो निशान पड़ जाता। इतने मुलायम भगवान की हथेली, और वही हथेली को जब भगवान मुट्ठी में बंद करते हैं तो वो वज्र के समान हो जाती है, जैसे केशी जो घोड़े के रूप में ये असुर आया तो भगवान ने अपनी मुट्ठी इसके मुख में डाली। अब सोचिए यदि केशी ये सुनकर आया होता कि भगवान की हथेली कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा मुलायम है तो जालो मुंह में, क्या अच्छा है कमल की पंखुड़ी खाने मिलेगी? नहीं, भगवान ने वही हथेली जब मुक्के में बनाई तो वही मुक्का वज्र के समान जल रहा था, केशी के कंठ को जलाकर पूरे शरीर को जला दिया। इसलिए भगवान के अंगों को भी यदि हम देखें तो अलग अलग भगवान के अंग वही रहे परंतु उनमें विरोधाभास देखा गया उनकी लीलाओं में। इन्हीं होठों से भगवान ने मुरली बजाई और गोपियों को रासलीला के लिए बुलाया, और इन्हीं होठों से पुतना का वध किया। तो रासलीला का कारण ये होठ बने, पुतना वध का कारण भगवान के होठ बने। अब सोचिए इतनी विशाल विकराल ये राक्षसी, 8-10 मील लंबी, इस राक्षसी को मारने के लिए क्या व्यक्ति अपने होठ इस्तेमाल करेगा? भगवान ने अष्ट सत्र तो दूर की बात है, अपने हाथ पैर भी इस्तेमाल नहीं किए, केवल होंठ। ये भगवान की होठों की शक्ति है। ओलंपिक्स में आपने कहीं देखा कि कोई ऐसी स्पर्धा है जिसमें कोई व्यक्ति अपने होठों की शक्ति दिखाकर, कई बार देखा जाता है कि लोग बड़े बड़े वाहनों को खींचते हैं परंतु होठों से नहीं खींचते, दांतों से। यहां पर भगवान के होठों का कमाल, परंतु इसमें विरोधाभास दिखता है कि वही होठ इतनी मधुर मुरली की ध्वनि निकाल सकते हैं और वही होठ पूतना के लिए मृत्यु समान। वही भगवान के हस्त तृणावर्त के लिए वज्र के समान प्रतीत हो रहे थे, और वही भगवान के हस्त, उनको कहा जाता है वरद हस्त। दक्षिण भारत में वरदराज नाम के भगवान का विग्रह है जो कि भगवान के वरद हस्त के लिए बहुत विख्यात है। तो वही भगवान के वरद हस्त, और वही जब तृणावर्त को भगवान ने अपने आगोश में लिया तो तृणावर्त को वही भगवान के हस्त वज्र के समान प्रतीत हुए। वही भगवान के चरण, कई बार माता यशोदा जब सुनती कि भगवान, हालांकि माता यशोदा तो केवल अपना पुत्र मानती थी, जब सुनती ग्वाल बाल आकर कहते कि आज बकासुर को अपने हाथों से ऐसे चीर फाड़ कर दिया और केशी को मुक्के से मार दिया, तो माता यशोदा कृष्ण की हथेली लेती देखने के लिए, इसमें इतनी शक्ति है क्या, क्या ये सब कर पाएगा, कर पाता है ये सब काम? तो माता यशोदा को लगता, जैसे यहां पर हम विरोधाभास की चर्चा कर रहे हैं, माता यशोदा को लगता है कि ये केवल माखन भी ठीक से नहीं खाता, वो भी मेरे घर का नहीं, बाहर किस पता नहीं कहां का कौन सा क्वालिटी का माखन खाकर आता है, इसके अंदर कहां इतनी शक्ति की है इतने बड़े बड़े असुरों का वध करे। भगवान के वही चरण कमल जब भगवान के भक्त अपने हृदय में स्थापित करते हैं तो सारा काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार नष्ट हो जाता है। और वही जब भगवान कालिया के ऊपर नाच रहे थे उन्हीं चरणों से, तो कालिया को एक एक भगवान के चरण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सुमेरु पर्वत का वजन कालिया के ऊपर डाला जा रहा। सर्वशक्तिमान भगवान परंतु माता यशोदा से भयभीत। जो बाकी सब भगवान से थर थर कांपते हैं, मद भयात वाति वातोयम सूर्य स्तपति मद भयात वर्षतिंद्रो दहत अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात, सभी भयभीत हैं भगवान से, सूर्य चंद्र इंद्र वरुण मृत्यु मूर्तिमान भयभीत है भगवान से, परंतु वही भगवान माता यशोदा की छड़ी देखते हैं, माता यशोदा का नाम सुनते ही भगवान कई बार रोने बिलखने लगते थे। माता यशोदा के सामने भगवान कोई नाटक नहीं करते थे रोने का। सत्यव्रत मुनि कहते हैं वास्तविक रूप में भगवान ऐसे रो रहे थे रुदंतम मुहुर नेत्र, कि रोते हुए उनके दोनों नेत्रों से इतने अश्रु बह रहे थे कि भगवान को दिख नहीं रहा था, और जितना काजल भगवान को लगाया हुआ था उनके नेत्रों में सारा काजल उनके पूरे चेहरे पर फैल रहा था। और उनके जो कंठ है वो कांप रहा था, जो तीन रेखाएं भगवान के कंठ पर हैं वो तीनों रेखाएं ऐसे कंपन कर रही थी। थोड़ा कल्पना कीजिए इस दृश्य को कि जिससे सभी भयभीत हैं वो भगवान माता यशोदा के सामने थर थर कांप रहे हैं। ये विरोधाभास, परंतु माता यशोदा के प्रेम के सामने भगवान भयभीत हैं, इसलिए वो भगवान है। यदि वो भयभीत न हो माता यशोदा के सामने तो वो भगवान नहीं, क्योंकि भगवान की क्या परिभाषा, सभी विरोधाभास का समाधान उनमें है। तो उनका गुणगान होता है जब वो सर्वशक्तिमान के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और उनका गुणगान होता है जब वो माता यशोदा के सामने थर थर कांपते हैं। दोनों में उनका गुणगान होता है, इसलिए वो भगवान है। अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, परंतु स्वयं रणछोड़ राय बने। ये देखिए, मानो यदि अर्जुन को पता होता आगे चलकर ये खुद रण से भागने वाले हैं, तो अर्जुन भगवान से कहते, रुको 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 रुको, मुझे बताया गया है कि आपका तो मंदिर बनने वाला है, रणछोड़ राय की जय, डाकोर मां कौन छे, राजा रणछोड़ छे। तो वहां पर उनकी आराधना होती है, और कौन से रूप की आराधना, जो रण को छोड़कर भागे। सोचिए, इस गुण को पूजा जाता है, उनके इस गुण को पूजा जाता है। तो भगवान जो कि अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम रण छोड़कर भाग रहे हो, कायर, डरपोक, वही स्वयं रण को छोड़कर भागे। परंतु दोनों में उनका गुणगान हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान है। और ये विरोधाभास है इसलिए वो भगवान है, क्योंकि वो भगवान है इसलिए उसमें विरोधाभास होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि वो विरोधाभास है इसलिए हमें समझ में नहीं आएगा, और क्योंकि हम भगवान नहीं है इसलिए हम भगवान का विरोधाभास अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। समझे? अंतिम विरोधाभास भगवान की लीलाओं का, कुरुक्षेत्र के युद्ध में बिना शस्त्र उठाए सारे शत्रु सेना को इन्होंने ही परास्त किया। अर्जुन निमित्त मात्र भव सव्य साची, वो निमित्त मात्र बने, और भगवान ने दिखा भी दिया युद्ध के अंत में, जब अर्जुन को कहा रथ से तुम पहले उतरो, और फिर सारा रथ अग्नि में विध्वंस हो गया, तो अर्जुन को समझ में आया। भगवान ने कहा कि ये मत समझना कि तुम रथ पर चढ़े सबको मार रहे थे, वो रथ पर मैं था इसलिए उसके कारण सब कुछ हो रहा था। और इसकी चर्चा हमने की कि भगवान अर्जुन नहीं देख पा रहा था कि अर्जुन कई योद्धाओं को आसानी से कैसे हरा पा रहा था। कई ऐसे योद्धा थे जिनके अंदर इतनी शक्ति थी कि अर्जुन थक हार कर उस दिन चले जाते, परंतु भगवान जो कि अर्जुन नहीं देख पा रहा था, भगवान उन योद्धाओं को देखकर मुस्कुराते, और वो योद्धा फिर अर्जुन को छोड़कर भगवान की मुस्कुराहट को देखते, और फिर वो एकदम स्तब्ध रहकर खड़े रह जाते, और अर्जुन को लगता है ये अचानक मेरे साथ युद्ध करते हुए रुक क्यों गया, ये फ्रीज क्यों हो गया। और फिर भगवान अर्जुन को इशारा करते, चलाओ बाण चलाओ, उसकी तरफ हंसते रहते, चलाओ बाण चलाओ, और वो भगवान की मुस्कुराहट को देखते रहता। और यहां पर बाण और भगवान की मुस्कुराहट को देखते देखते वो अपना शरीर त्यागता। तो सोचिए, अर्जुन का भला, वो मरने वाले का भला, सबका भला, इसलिए वो भगवान। तो भगवान ने एक शस्त्र भी नहीं उठाया। सारथी, अब सारथी को कोई मेडल नहीं मिलता, उसने तो केवल रथ चलाया है, परंतु पूरे युद्ध के जीतने का श्रेय अंततः भगवान को ही मिला। हालांकि वो केवल सारथी के रूप में रहे, और सारथी कभी युद्ध नहीं करता, केवल ड्राइवर। तो पार्थ सारथी, वो भगवान, उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में इस प्रकार का विरोधाभास दिखाते हुए अपनी भगवत्ता दिखाई, और अपने भक्तों के प्रति प्रेम दिखाया, इसलिए वो हैं भगवान। और अंतिम भगवान की लीला हम कलयुग में देखते हैं। कलयुग जैसे अधम युग में अध्यात्म की सबसे ऊंची विधि को उन्होंने अर्पित किया। कोई गुण हमारे अंदर नहीं है कि हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है, और विशेष रूप से केवल इतना ही नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र भी उपनिषदों में बताया गया है, परंतु ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान श्री कृष्ण वो श्रीमती राधा रानी के भाव में लाकर हमें दिए। राधा भाव द्युति सुविलितम, जिनका आविर्भाव दिवस हम कल मनाने वाले हैं। तो श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, साक्षात वो महाभाव श्रीमती राधा रानी का श्री चैतन्य महाप्रभु हम कलयुग के अधम पतित जीवों को ला कर दिया कि हमें इसकी कल्पना भी नहीं है कि हमें क्या मिल रहा है, क्या मिला है। अब कितने लोग राधाष्टमी मनाते हैं, यदि नासिक में आप जाकर पूछो कि राधाष्टमी है कल, तो बाकी बहुत अष्टमी पता है लोगों को। यदि जाकर पूछो कि गणेश उत्सव चल रहा है, इसके बारे में आपको मालूम है? नहीं भी मालूम तो पता लग जाता है, इतना हो हल्ला होता है। परंतु सब सर्वोच्च जो भाव अध्यात्म का, राधा रानी का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कितने लोगों को पता है इसके बारे में? और शास्त्र में भी राधा रानी का नाम इतना ज्यादा नहीं, श्रीमद् भागवत में भी इनडायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम लिया है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी यदि डायरेक्टली राधा रानी का नाम ले ली तो आगे वो सुना ही नहीं पाते थे भागवत। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने भी श्रीमती राधा रानी को इस प्रकार से दिया परीक्षित महाराज को, जैसे आवृत तरीके से, कवर्ड तरीके से। परंतु वही श्रीमती राधा रानी का महाभाव प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुले रूप में हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा दिया है। और यदि हमें इस विरोधाभास को ठीक ठीक से समझना है, तो हमें कल की श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस को उस चेतना से मनाना होगा जिस चेतना में श्री चैतन्य महाप्रभु हमें वो प्रेम देने के लिए आए। इसलिए हम आप सबको आमंत्रित करते हैं, और आपके जितने सारे परिवार वाले और मित्र, उन सबको आप लेकर आइए। बहुत ही महत्वपूर्ण कल का उत्सव है श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस, राधाष्टमी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना है तो हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा अवश्य ही प्राप्त करनी है। बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा के भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए यदि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पूर्ण रूपेण हमारे जीवन में चाहिए, तो हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा याचना अवश्य ही, और विशेष रूप से उनके आविर्भाव दिवस के दिन, जो कि कल कार्यक्रम संध्या के समय, हालांकि सुबह मंगल आरती से श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस मनाया जाएगा, तो आप लोगों को आमंत्रण सुबह से दिया जा रहा है, 5 बजे से आ सकते हैं, सुबह के 5 बजे से मंगल आरती और उसके पश्चात बाकी का जो कार्यक्रम होगा, और विशेष कार्यक्रम संध्या के समय होगा, शाम के 6:30 बजे श्रीमती राधा रानी की कीर्ति का गान होगा, भजन होंगे, और 7 बजे अभिषेक होगा, 7 बजे अभिषेक होगा। और यदि आप अभिषेक के इच्छुक हैं, श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के अभिषेक के द्वारा, तो समय पर आ जाइए, क्योंकि समय कम रहेगा कल संध्या के समय। तो अभिषेक के पश्चात फिर प्रवचन कीर्तन, और सबके लिए श्रीमती राधा रानी की कृपा का महाप्रसाद। विशेष फीस्ट होगा, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की मुख्य सेवा भगवान श्री कृष्ण के प्रति है कुकिंग। पूरा कुकिंग डिपार्टमेंट श्रीमती राधा रानी का है। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं विरोधाभास पर, तो विरोधाभास का भजन गाया जाए, जो कि हमने कृष्ण लीला सप्ताह में गाया था। शायद आप ही का रिक्वेस्ट है, गाएं। एक और सूचना कि क्योंकि श्रीमती राधा रानी का डिपार्टमेंट कुकिंग का डिपार्टमेंट है, इसलिए यदि हम जो भी हमसे बन पाए भोग श्रीमती राधा रानी के लिए, और श्रीमती राधा रानी तो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करती हैं, तो जो भी कुछ हम प्रेम से बनाकर लाएं तो बहुत प्रसन्नता होगी श्रीमती राधा रानी को, कि हम उनके जो निजी डिपार्टमेंट है उसमें उनकी सहायता कर रहे हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम कौन कहता है भगवान नाचते नहीं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम कौन कहता है भगवान हंसते नहीं कौन कहता है भगवान हंसते नहीं ग्वाल सखाओं के जैसे हंसाते नहीं ग्वाल सखाओं के जैसे हंसाते नहीं अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम कौन कहता है भगवान बरसते नहीं कौन कहता है भगवान बरसते नहीं जातकों की तरह तुम तरसते नहीं जातकों की तरह तुम तरसते नहीं अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम
कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम बोल मोर मुकुट बंसी वाले की
हरे कृष्ण। जैसे कि प्रभु जी ने कहा कि कल राधाष्टमी है, तो सही में अगर भक्तों अगर राधा रानी को अगर खुश करना है तो कुछ विशेष ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप राधा रानी को खुश कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ऐसे